भारत के इलाकाई अफसानों में है कि सुकरात के शागिर्दी रिवायत के मुफक्किर अरस्तु ने अपने शागिर्द सिकंदर को भारत से गीता का सही इल्म रखने वाले मुअल्लिम लाने का हुक्म दिया था। गीता की ही वहदानियत यानी तौहीद को दुनिया की मुतफर्रिक जबानों में हजरत मूसा, हजरत ईसा और मुख्तलिफ सूफी फकीरों ने फैलाया। तब्दील जबान होने से ये जुदा जुदा महसूस होते हैं, लेकिन उसूल गीता के ही हैं। लिहाजा गीता तमाम इंसानों की बातिनी यकजहती की दीनी शरीयत है। गीता का मफहूम यथार्थ गीता की शक्ल में पेश कर श्री अड़गणानंद स्वामी ने तमाम इंसानों को एक बेशकीमती दौलत अता की है। गीता के हजारहा तर्जुमात के दरमियान मुनव्वर इस तशरीह की रोशनी में आप सब आला शरफ के मुस्ताहिक बने।
ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद गीता,
अथ षष्ठोध्याय, छठा बाब। दुनिया में दीन के नाम पर रस्म रिवाज, इबादत के तौर तरीके, फिरकों की इफरात होने पर बद रिवाजों का खात्मा करके एक माबूद को कायम करने और उसके हुसूल के तरीके कार को हमवार करने के लिए किसी अजीम इंसान का अवतार होता है। आमाल को छोड़कर बैठ जाने और आलिम कहलाने की कदामत श्री कृष्ण के दौर में बेहद तारी थी। लिहाजा इस बात के शुरू में ही जोग के मालिक श्री कृष्ण ने इस सवाल को चौथी बार खुद खड़ा किया कि इल्मी जोग और बेगरज अमली जोग दोनों के मुताबिक अमल करना ही होगा। बाब दो में उन्होंने कहा था, अर्जुन, क्षत्रिय के लिए जंग से बढ़कर इफादी कोई रास्ता नहीं है। इस जंग में हारोगे तो भी देवता का मर्तबा है और फतेह याब होने पर हुजूर आला का मकाम ही है। ऐसा समझकर जंग कर। अर्जुन, ये अक्ल तेरे लिए इल्मी जोग के मुतालिक बताई गई। कौन सी अक्ल? यही कि जंग कर। इल्मी जोग ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। इल्मी जोग में सिर्फ अपने नफा व नुकसान का खुद फैसला करके अपनी ताकत समझकर अमल में लगना है, जबकि मुहर्रिक के अजीम इंसान ही है। इल्मी जोग में जंग करना लाजमी है। बाब तीन में अर्जुन ने सवाल किया कि बंदा परवर, बेगरज अमली जोग के मुकाबले इल्मी जोग आपको अफजल और काबिल ताजीम है, तो मुझे खौफनाक आमाल में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को बेगरज अमली जोग मुश्किल तलब महसूस हुआ। इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों अकीदतों का बयान मेरे जरिए किया गया है, लेकिन किसी भी रास्ते के मुताबिक अमल को तर्क करके चलने का उसूल नहीं है। ना तो ऐसा ही है कि अमल को शुरू ना करने से कोई बेगरज वाली आला कामयाबी को हासिल कर ले, और ना शुरू किए हुए अमल को तर्क कर देने से कोई उस आला कामयाबी को हासिल करता है। दोनों रास्तों में मुअय्यना अमल, यज्ञ के तरीकेकार पर अमल पैरा होना ही पड़ेगा। अब अर्जुन ने अच्छी तरह समझ लिया कि इल्मी जोग अच्छा लगे या बेगरज अमली जोग, दोनों नजरियात में अमल करना ही है। फिर भी पांचवें बाब में उसने सवाल किया कि समरे के नजरिए से कौन अफजल है, कौन आसान है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही आला शरफ को अता करने वाले हैं, एक ही मकाम पर दोनों पहुंचाते हैं। फिर भी इल्मी जोग के बनिस्बत बेगरज अमली जोग अफजल है, क्योंकि बेगरज अमल का बर्ताव किए बगैर कोई कामिल नहीं हो सकता। दोनों में अमल एक ही है, लिहाजा साफ जाहिर है कि وہ معینہ عمل کیے بغیر کوئی کامل نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی جوگی ہی ہو سکتا ہے۔ صرف اس راہ پر چلنے والے راہگیروں کے دو نظریات ہیں جنہیں پیچھے بتایا گیا ہے۔ شری بھگوان اواچا۔
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।
श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अमल के समरे की पनाह से आरी होकर یعنی عمل کرتے وقت کسی طرح کی خواہش نہ رکھتے ہوئے جو کاریم کرم کرنے لائق خاص طریقہ کار کو عمل میں لاتا ہے وہی کامل ہے، وہی جوگی ہے۔ صرف آنکھ کو ترک کرنے والا اور صرف عمل کو ترک کرنے والا نہ کامل ہے نہ جوگی۔ اعمال بہت سے ہیں، ان میں سے کاریم کرم کرنے کے قابل عمل یعنی نیت کرم، معینہ عمل یعنی نیت کرم، معین کیا ہوا کوئی طریقہ خاص ہے، وہ ہے یجنگ کا طریقہ کار، جس کا خالص مطلب ہے عبادت، جو قابل عبادت معبود میں داخلہ دلا دینے والا طریقہ خاص ہے، اس کو عملی شکل دینا عمل ہے۔ جو اس عمل کو کرتا ہے وہی کامل ہے، وہی جوگی ہوتا ہے۔ صرف آنکھ کو ترک کرنے والا کہ ہم آنکھ کو نہیں چھوتے، یا عمل ترک کرنے والا کہ میرے لیے اعمال ہے ہی نہیں، میں تو خود شناس ہوں، صرف ایسا کہے اور عمل کی شروعات ہی نہ کرے، عمل کرنے کے لائق طریقے خاص پر عمل پیرا نہ ہو، تو وہ نہ کامل ہے نہ جوگی۔ اس پر اور دیکھیں۔
یم سنیاسمیتی پراہو یوگم تم ویدھی پانڈو نیہ سنیست سنکلپو یوگی بھوتی کشچن۔
ارجن، جسے ترک دنیا یعنی سنیاس کہتے ہیں، اسی کو تو جوگ جان، کیونکہ ارادوں کا ایثار کیے بغیر کوئی بھی انسان جوگی نہیں ہوتا۔ یعنی خواہشات کا ایثار دونوں ہی راستوں پر چلنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ تب تو بہت آسان ہے کہ کہہ دیں کہ ہم ارادہ نہیں کرتے اور ہو گئے جوگی اور راہب۔ شری کرشن کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते।
जोग पर कमर बस्ता होने की ख्वाहिश वाले मुफक्किर इंसान के लिए जोग के हुसूल में अमल करना ही एक वजह है، اور جوگ کا عزم کرتے کرتے جب وہ سمرا دینے کی حالت میں آ جائے، اس جوگ کی کمر بستگی میں شمہ کارنم اچتے، تمام ارادوں کی کمی ایک وجہ ہے، اس سے پہلے ارادے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اور
یدا ہینیندریارتھیشو نا کرم سنوشجتے سرو سنکلپ سنیاسی یوگا روڑھستدوچتے۔
جس دور میں انسان نہ تو حواس کے تعیشات میں راغب ہوتا ہے اور نہ اعمال میں ہی راغب ہے، یعنی جوگ کی تکمیلہ حالت میں پہنچ جانے پر آگے عمل کر کے تلاش کس کی کریں، لہذا معینہ عمل عبادت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اسی واسطے وہ اعمال میں بھی راغب نہیں ہے۔ اس دور میں सर्व संकल्प सन्यासी, तमाम इरादों की कमी है, वही तर्क दुनिया है, वही जोग की कमर मस्तगी है। रास्ते में तर्क दुनिया नाम की कोई चीज नहीं, इस जोग की कमर मस्तगी से फायदा क्या है।
उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः।
अर्जुन, इंसान को चाहिए कि वो अपने जरिए अपनी नजात हासिल करे, अपनी रूह को जहन्नम रसीद ना करे, क्योंकि ये जी रूह खुद ही अपनी दोस्त और दुश्मन भी है। कब ये दुश्मन होती है और कब दोस्त, इस पर कहते हैं,
बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्।
जिस जी रूह के जरिए मन और हवास के साथ जिस्म पर फतेह हासिल कर ली गई है, उसके लिए उसी की जी रूह दोस्त है, और जिसके जरिए मन और हवास के साथ जिस्म पर फतेह हासिल नहीं की गई है, उसके लिए वो खुद दुश्मनी का सलूक करती है। इन दो श्लोकों में से श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपने जरिए अपनी रूह की नजात करें, उसे जहन्नम में ना धकेले, क्योंकि रूह ही दोस्त है। कायनात में ना दूसरा कोई दुश्मन है ना दोस्त। किस तरह? जिसके जरिए मन के साथ हवास पर काबू पाया गया है, उसके लिए उसी की रूह दोस्त बनकर दोस्ती का सलूक करती है, आला इफादी होती है। और जिसके जरिए मन के साथ हवास पर काबू नहीं पाया गया है, उसके लिए उसी की रूह दुश्मन बनकर दुश्मनी का सलूक करती है। लामहदूद शक्लों यानी योनियों और तकलीफों की जानिब ले जाती है। उमूमन लोग कहते हैं, मैं तो रूह हूं, गीता में लिखा है, ना इसे असलहा काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ये अबदि है, लाफानी है, ना बदलने वाली है, दायमी है, और वो रूह मुझ में है ही। वो गीता की उन सुतूर पर ख्याल नहीं करते कि रूह जहन्नम में भी जाती है, रूह को नजात भी मिलती है। जिसके लिए कार्यम कर्म करने लायक खास तरीके से अमल करके ही हुसूल बताया गया है। अब मुनासिबत वाले रूह की पहचान देखें।
जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो।
सर्दी गर्मी आराम और तकलीफ और इज्जत और जिल्लत में जिसके बातिन के खसाइल अच्छी तरह खामोश हैं, ऐसे आजाद रूह वाले इंसान में रूह मुतलक हमेशा मौजूद है, कभी जुदा नहीं होता। जितात्मा यानी जिसने मन के साथ हवास को काबू में कर लिया है, खसलत सुकून कुल्ली में रवां हो गई है, यानी यही रूह की नजात की हालत है। आगे कहते हैं,
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः।
जिसका बातिन इल्म और खुसूसी इल्म से आसूदा है, जिसकी हालत अटल कायम और बेऐब है, जिसने हवास पर खास तौर से काबू पा लिया है, जिसकी नजर में मिट्टी पत्थर सोना एक जैसा है। ऐसा जोगी युक्त यानी मुजयन कहा जाता है। युक्त का मतलब है जोग से मुजयन। ये जोग का आखिरी अंजाम है, जिसे जोग के मालिक पांचवें बाब में श्लोक 7 से 12 तक बयान कर आए हैं। उनसुरे आला माबूद का बदी ही दीदार और उसके साथ होने वाली जानकारी का नाम इल्म है। जरा सा भी मतलूब से दूरी है, जानने की ख्वाहिश बनी है, तब तक वो जाहिल है। वो मुहर्रिक कैसे हर जगह मौजूद है, कैसे तरगीब देता है, कैसे तमाम अरवाह की एक साथ रहनुमाई करता है, कैसे वो माजी मुस्तकबिल और हाल का इल्म रखने वाला है। उस मुहर्रिक माबूद के तरीके कार का इल्म ही खुसूसी इल्म है। जिस दिन से माबूद का दिल में जुहूर हो जाता है, उसी दिन से वो हिदायत देने लगता है, लेकिन शुरू में रियाजत का समझ नहीं पाता। दौरे इंतहा में ही जोगी उनके बातिनी तरीके कार को पूरी तरह समझ पाता है। यही समझ खुसूसी इल्म है। जोग में आमादा या जोग के हामिल इंसान का बातिन इल्म और खुसूसी इल्म से मुतमईन रहता है। इसी तरह जोग से मुजयन इंसान की हालत की वजाहत करते हुए जोग के मालिक श्री कृष्ण फिर कहते हैं,
सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।
हुसूल के बाद अजीम इंसान यकबीन और हमसर होता है। जैसे गुज़िश्ता श्लोक में उन्होंने बताया कि जो मुकम्मल आलिम या पंडित है, वो इल्म और इनकसारी रखने वाला अजीम इंसान ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय, कुत्ता, हाथी में मुसावी नजर वाला होता है। उसी का तकमिला ये श्लोक है। वो दिल से मदद करने वाले मेहरबान, दोस्तों, दुश्मनों, गैर जानिबदारों, कीनावरों, कराबतदारों, दीनदारों और गुनाहगारों में भी मुसावी नजर वाला जोग का हामिल इंसान बेहद अफजल है। वो उनके कामों पर नजर नहीं डालता, बल्कि उनके अंदर रूह की हरकत पर ही नजर पड़ती है। इन सब में सिर्फ इतना फर्क देखता है कि कोई कुछ नीचे के जीने पर खड़ा है तो कोई पाकीजगी के करीब, लेकिन वो सलाहियत सब में है। यहां जोग के हामिल की पहचान फिर दोहराई गई। कोई जोग का हामिल कैसे बनता है, वो कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ की जगह कैसी हो, आसनी कैसी हो, उस वक्त कैसे बैठा जाए, कारकुन के जरिए अपनाए जाने वाले उसूल, खान पान और तफरीह, सोने जागने का एहतियात और अमल पर कैसी कोशिश हो, वगैरह नुक्तों पर जोग के मालिक श्री कृष्ण ने अगले 5 श्लोकों में रोशनी डाली है, जिससे आप भी उसी यज्ञ को अंजाम दे सकें। बाब 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ का तरीके कार ही वो मुअय्यना अमल है। बाब 4 में उन्होंने यज्ञ की शक्ल का तफसील के साथ बयान किया, जिसमें जान का रियाह में हवन, रियाह का जान में हवन, जान और रियाह की हरकत को रोककर मन पर काबू वगैरह किया जाता है। सब मिलाकर यज्ञ का खालिस मतलब है इबादत, और उस काबिले इबादत माबूद तक की दूरी तय कराने वाला तरीके कार जिस पर 5वें बाब में भी कहा, लेकिन उसके लिए आसनी यानी गद्दी, जमीन, अमल करने का तरीका वगैरह का बयान बाकी था। उसी पर जोग के मालिक श्री कृष्ण यहां रोशनी डालते हैं।
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह।
तबीयत पर काबू करने में लगा हुआ जोगी मन, हवास और जिस्म को काबू में रखकर, हवास और ख्वाहिशात से मुबर्रा होकर तन्हाई में अकेली ही तबीयत को यानी रूह का इल्म कराने वाली जोग के अमल में लगाए उसके लिए जगह कैसी हो, आसनी कैसी हो।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्।
पाक जमीन पर कोस की चटाई, हिरन, शेर, बाघ वगैरह की खाल, कपड़ा या इनसे बेहतर यानी रेशमी, ऊनी, तख्त, कुछ भी बिछाकर अपने आसन को ना ज्यादा ऊंचा ना नीचा, गैर मुतहर्रिक बनावें। पाक जमीन का मतलब उसे झाड़ने, बहारने, सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे हिरन की खाल हो या चटाई, ख्वाह कोई भी साफ कपड़ा, तख्त वगैरह जो भी मिल जाए। कोई एक चीज लेना चाहिए, आसन हिलने डुलने वाला ना हो, ना जमीन से बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। काबिले एहतराम महाराज जी तकरीबन 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। एक बार अकीदतमंदों ने तकरीबन 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया। महाराज जी एक दिन बैठे, फिर बोले, नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गया, ऊंचे नहीं बैठना चाहिए, साधु को गुरूर हो जाया करता है, नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, हकारत पैदा होती है, खुद से नफरत होने लगती है। बस उसको उठवाया, जंगल में एक बाग था, वहां रखवा दिया। वहां ना कभी महाराज जाते थे और ना अब भी कोई जाता है। ये थी उस अजीम इंसान की अमली तरबियत। इसी तरह रियाजत कश के लिए बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो याद इलाही की तकमील बाद में होगी, गुरूर पहले चढ़ बैठेगा। इसके बाद
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जा योगमात्मविशुद्धये।
उस आसन पर बैठकर यानी बैठकर तसव्वुर करने का उसूल है, मन को यकसोई करके तबीयत और हवास के मुतहर्रिकात को काबू में रखते हुए बातिन की तहारत के लिए जोग की मश्क करें। अब बैठने का तरीका बताते हैं।
समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्।
जिस्म, गर्दन और सर को सीधा, अटल, साकिन करके यानी जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो, इस तरह सीधा अटल होकर बैठ जाएं और अपनी नाक के दूसरे हिस्से को देखकर यानी नाक की नोक देखते रहने की हिदायत नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहां पड़ती है वहां नजर रहे, दाहिने बाएं देखते रहने की शौकी ना रहे, दूसरे समतों को ना देखता हुआ साकिन होकर बैठे और
प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः।
अज़्म रहबानियत में कायम होकर यानी आमतौर से लोग कहते हैं कि अज़्वे तनासुल की एहतियात रहबानियत है, लेकिन अजीम इंसानों का तजुर्बा है कि मन से मौजूआत की याद करके आंखों से वैसे मंजर देखकर, खाल से लम्स कर, कानों से शहवत अफजा अल्फाज सुनकर अजुए तनासुल की एहतियात मुमकिन नहीं है। ब्रह्मचारी का सही माना है कि ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। जाते मुतलक का अमल है मुअय्यना अमल, यज्ञ का तरीके कार, जिसे करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम, अबदी माबूद में दाखिला हासिल कर लेते हैं। इसे करते वक्त स्पर्शान कृतवा बहिर्बाह्यान, खारिजी लम्स मन और हवास के लम्स बाहर ही तर्क कर तबीयत को माबूद के गौर फिक्र में, तनफ्फुस में, तसव्वुर में लगाना है। मन माबूद में लगाया बाहरी चीजों को याद कौन करे? अगर बाहरी चीजें याद में आती हैं तो अभी मन लगा कहां? उयूब जिस्म में नहीं मन की मौज में रहते हैं। मन माबूद के अमल में लगा है तो अजुए तनासुल पर बंदिश ही नहीं, तमाम हवास पर बंदिश तक कुदरतन हो जाती है। लिहाजा माबूद के अमल में कायम रहकर बेखौफ और अच्छी तरह पुरसुकून बातिन वाला, मन को काबू में रखते हुए मुझ में लगी हुई तबीयत से मुजयन मेरा हामिल होकर कायम हो, ऐसा करने का समरा क्या होगा?
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति।
इस तरह खुद ब खुद मुसलसल उसी गौर फिक्र में मशगूल रखता हुआ मौतदिल जोगी मेरे अंदर मौजूद आखिरी अंजाम वाले आला सुकून को हासिल करता है। लिहाजा खुद को मुसलसल अमल में लगाएं। यहां यह सवाल तकरीबन मुकम्मल ही है। अगले दो श्लोकों में वो बताते हैं आला मसर्रत देने वाले सुकून के लिए जिस्मानी एहतियात, मुनासिब खुराक, तफरीह भी जरूरी है।
नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन।
अर्जुन, ये जोग ना तो ज्यादा खाने वाले का कामयाब होता है और न बिल्कुल ना खाने वाले का कामयाब होता है, ना बे इंतहा सोने वाले का और ना बे इंतहा जागने वाले का ही कामयाब होता है, तब किसका कामयाब होता है?
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
तकलीफों का खात्मा करने वाला ये जोग मुनासिब खान पान, तफरीह, आमाल में मुनासिब कोशिश और मुअतदिल सोने और जागने वाले का ही पूरा होता है। लिहाजा ज्यादा खुराक लेने से तसाहुली, नींद और मदहोशी घेरेगी, तब रियाजत नहीं होगी। खाना छोड़ देने से हवास कमजोर हो जाएंगे, अटल साकिन बैठने की ताकत नहीं रहेगी। काबिले एहतराम महाराज जी कहते थे कि खुराक से डेढ़ दो रोटी कम खाना चाहिए, तफरीह यानी वसीले के मुताबिक घूमना फिरना, सैर सपाटा, कुछ मेहनत भी करते रहना चाहिए, कोई काम ढूंढ लेना चाहिए, वरना खून का बहाव कमजोर पड़ जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी, उम्र सोने जागने, खाने पीने और रियाज से घटती बढ़ती है। महाराज जी कहा करते थे जोगी को चार घंटे सोना चाहिए और मुसलसल गौर और फिक्र में लगे रहना चाहिए। बजिद होकर ना सोने वाले जल्द पागल हो जाते हैं। आमाल में मुनासिब कोशिश भी हो यानी मुअय्यना अमल इबादत के मुताबिक मुसलसल कोशां हो, خارجی موضوعات کی یاد نہ کر ہمیشہ اسی معبود میں لگے رہنے والے کا ہی جو کامیاب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی
یدا ونیتم چتم آتمنیواوتیشتھتے نسپرہ سرو کامیبھیو یکت اتیوچتے تدا۔
اس طرح جوگ کی مشق سے خاص طور پر قابو میں کی ہوئی طبیعت جس وقت روح مطلق میں اچھی طرح تحلیل ہو جاتی ہے، اس دور میں تمام خواہشات سے مبرہ ہوا انسان جوگ سے مزین کہا جاتا ہے۔ اب خاص طور سے قابو میں کی ہوئی طبیعت کے نشانات کیا ہیں؟
یتھا دیپو نیواتستھو نینگتے سوپما سمرتا یوگینو یت چتسیا یونجتو یوگماتمنا۔
جس طرح ہوا سے خالی جگہ میں رکھا ہوا چراغ متزلزل نہیں ہوتا، لو سیدھے اوپر جاتی ہے، اس میں لرزش نہیں ہوتی، یہی مثال روح مطلق کے تصور میں ڈوبے ہوئے جوگی کے ذریعے قابو میں کی گئی اس طبیعت کی دی گئی ہے۔ چراغ تو محض مثال ہے، آج کل چراغ کا رواج کم ہو گیا ہے، اگر بتی ہی جلانے پر دھواں سیدھے اوپر جاتا ہے اگر ہوا تیز نہ ہو۔ یہ جوگی کے ذریعے قابو میں کی ہوئی طبیعت کی محض ایک مثال ہے۔ ابھی طبیعت بھلے ہی قابو میں کر لی گئی ہے، بندش ہو گئی ہے، لیکن ابھی طبیعت باقی ہے۔ جب بندش شدہ طبیعت کی بھی تحلیل ہو جاتی ہے تب کون سی شوکت ملتی ہے؟ دیکھیں،
یترو پرمتے چتم نردھم یوگ سیویا یتر چیواتمناتمانم پشناتمنی تشیتی۔
جس حالت میں جوگ کی مشق سے یعنی بلا مشق کے کبھی بندش نہیں ہوگی، لہذا جوگ کی مشق سے بندش شدہ طبیعت بھی خاموش ہو جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں آتمنا اپنی روح کے ذریعے آتمانم روح مطلق کو دیکھتا ہوا آتمنی ایو اپنی روح میں ہی مطمئن ہوتا ہے۔ دیکھتا تو روح مطلق کو ہے لیکن مطمئن اپنی روح سے ہوتا ہے، کیونکہ حصول کے دور میں تو روح مطلق کا بدی ہی دیدار ہوتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اپنی ہی روح کو ان دائمی خدائی شوکتوں سے آلودہ پاتا ہے۔ معبود، جاوید، ابدی، دائمی، غیر مرئی اور لافانی ہے، تو ادھر روح بھی جاوید، ابدی، دائمی، غیر مرئی اور لافانی ہے، تو لیکن بعید القیاس بھی ہے۔ جب تک طبیعت اور طبیعت کی لہر ہے تب تک وہ آپ کے استعمال کے لیے نہیں ہے۔ طبیعت پر قابو اور قابو شدہ طبیعت کے تحلیلی دور میں روح مطلق کا بدیہی دیدار ہوتا ہے، اور دیدار کے ٹھیک دوسرے پل انہی خدائی صفات سے مزین اپنی ہی روح کو پاتا ہے، لہذا وہ اپنی ہی روح میں مطمئن ہوتا ہے۔ یہی اس کی حقیقی شکل ہے، یہی آخری انجام ہے۔ اسی کا تکملہ اگلے شلوک میں دیکھیں۔
سکھماتیکم یتت بدھیگراہمتیندریم ویتی یتر ن چیوایم استتشلتی تتوتہ۔
اور حواس سے ماورا صرف متبرک لطیف عقل کے ذریعے قبول کرنے کے لائق جو لامحدود مسرت ہے उसको जिस हालत में महसूस करता है और जिस हालत में पहुंचा हुआ जोगी माबूद की हकीकी शक्ल को उनसुर से जानकर मुतजलजिल नहीं होता, उसी में हमेशा कयाम करता है। और
यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।
आला माबूद के हुसूल की तमसील फायदे को, इंतहाई सुकून को हासिल कर उससे ज्यादा दूसरा कुछ भी फायदा नहीं मानता। और माबूद को हासिल करने वाली जिस हालत में पहुंचा हुआ जोगी भारी तकलीफ से भी मुतजलजिल नहीं होता, तकलीफ का उसे एहसास नहीं होता, क्योंकि कुव्वत एहसास वाली तबीयत तो खत्म हो गई। इस तरह
तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा।
जो दुनिया के मिलने और बिछड़ने के एहसास से खाली है, उसी का नाम जोग है। जो आला दाखिली सुकून है, उसके मिलन का नाम जोग है, जिसे उनसुरे आला रूहे मुतलक कहते हैं, उसके मिलन का नाम जोग है। उस जोग को बिना जल्दी किए तबीयत से यकीनी तौर पर अंजाम देना फर्ज है। सब्र के साथ लगा रहने वाला ही जोग में कामयाब होता है।
संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः।
लिहाजा इंसान को चाहिए कि अज्म से पैदा होने वाली तमाम ख्वाहिशात को शहवत और रगबत के साथ हमेशा के लिए तर्क कर, मन के जरिए हवास को अच्छी तरह से काबू में करके
शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्।
सिलसिलेवार मश्क करता हुआ आला सुकून को हासिल कर ले, तबीयत पर काबू और धीरे धीरे तहलील हो जाए, उसके बाद वो सब्र से मुजयन अकल के जरिए मन को रूहे मुतलक में कायम करके दूसरा कुछ भी ना सोचे, मुसलसल तौर पर लगकर हासिल करने का उसूल है। लेकिन शुरू में मन लगता नहीं, इसी पर जोग के मालिक कहते हैं।
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्।
ये साकिन न रहने वाला शोक मन जिन जिन वजूहात से दुनियावी मादियात में घूमता फिरता है, उन उनसे रोक कर बार बार बातिन में ही पाबंद करें। आमतौर से लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो, दुनिया में ही तो भटकेगा, और दुनिया भी उस माबूद के ही तहत है। दुनिया में घूमना फिरना माबूद के बाहर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के मुताबिक ये गलत है। गीता में इस तस्लीम शुद्गी की जरा भी गुंजाइश नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मन जहां जहां जाए, जिन वसीलों से जाए, उन्हीं वसीलों से रोककर रूहे मुतलक में लगावें। मन की बंदिश मुमकिन है, इस बंदिश का समरा क्या होगा।
प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्।
मुकम्मल तौर पर जिसका मन खामोश है, जो बेगुनाह है, जिसका मलकाते रद्दिया खामोश हो गया है, ऐसे माबूद में मुत्तहिदा जोगी को बेहतरीन मसर्रत हासिल होती है, जिससे अफजल कुछ भी नहीं है। इसी पर फिर जोर देते हैं।
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते।
गुनाह से खाली जोगी इस तरह रूह को मुसलसल उस रूह मुतलक में लगाता हुआ आराम के साथ आला माबूद रूह मुतलक के हुसूल की लामहदूद मसर्रत का एहसास करता है। वो ब्रह्म संस्पर्श यानी माबूद के लम्स और उसमें दाखिले के साथ लामहदूद मसर्रत का एहसास करता है। लिहाजा याद इलाही जरूरी है। इसी पर आगे कहते हैं,
सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्।
जोग के समरे का हामिल रूह वाला सब में मुसावात से देखने वाला जोगी रूह को तमाम जानदारों में जारी व सारी देखता है और सभी जानदारों को रूह के दायरे में ही रमा देखता है। इस तरह देखने से फायदा क्या है?
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
जो इंसान तमाम माद्यात में मुझ रूह मुतलक को देखता है, जारी वो सारी देखता है और तमाम माद्यात को मुझ रूह मुतलक के ही दायरे इख्तियार में देखता है, उसके लिए मैं मख्फी नहीं होता हूं और वो मेरे लिए मख्फी नहीं होता। ये मुहर्रिक की रूबरू मुलाकात है, दोस्ताना ख्याल है, नजदीकी नजात है।
सर्वभूतस्थितं यो मा भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते।
जो इंसान शिर्क से मुबर्रा मज़कूरा बाला वहदानियत के तस्वुर से मुझ रूहे मुतलक को याद करता है, वो जोगी हर तरह के आमाल का बर्ताव करता हुआ मेरे साथ ही जुड़ा है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं, उसका तो सब खत्म हो गया। लिहाजा अब वो उठता बैठता जो कुछ भी करता है मेरे इरादे के मुताबिक करता है।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वायदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।
अय अर्जुन, जो जोगी अपनी ही तरह सारे माद्यात में मुसावी देखता है, अपने जैसा देखता है, आराम और तकलीफ में भी मुसावी देखता है, वो जोगी यानी जिसका फर्क का ख्याल खत्म हो गया है, आला अफजल माना गया है। सवाल पूरा हुआ। इस पर अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच,
त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्।
अय मधुसूदन, ये जोग जिसके बारे में आप पहले समझा चुके हैं, जिससे मुसावात की नजर मिलती है, मन के शोक होने की वजह से काफी वक्त तक इसमें टिकने की हालत में मैं खुद को नहीं देखता।
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।
ऐ श्री कृष्ण, ये मन बड़ा शोक है, तफ्तीश करने वाला है, यानी दूसरे को मत डालने वाला है, जिद्दी और ताकतवर है, लिहाजा इसे काबू में करना मैं फजा को काबू में करने की तरह बेहद मुश्किल तलब मानता हूं। तूफानी फजा को और इस मन को काबू में करना बराबर है। इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाचा।
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
अजीम काम करने के लिए कोशां, यानी बाजुए अजीम अर्जुन, बेशक मन शोक है, बड़ी मुश्किल से काबू में होने वाला है, लेकिन कौन ते ये रियाजत और बैराग के जरिए काबू में होता है। जहां तबीयत को लगाना है वहीं साकिन करने के लिए बार बार कोशिश का नाम रियाजत है। और अच्छी तरह देखी सुनी तायुषात की चीजों में, यानी दुनिया या जन्नत वगैरह के तायुषात में, रगबत यानी लगाव का तर्क कर देना बैराग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को काबू में करना मुश्किल है, लेकिन रियाजत और बैराग के जरिए यह काबू में आ जाता है।
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः।
अर्जुन, मन को काबू में ना करने वाले इंसान के लिए जोग हासिल करना मुश्किल है, लेकिन अपने काबू में किए गए मन वाले कोशा इंसान के लिए जोग आसान है। ऐसा मेरा खुद का ख्याल है, जितना मुश्किल तू मान बैठा है उतना मुश्किल नहीं है, लिहाजा इसे मुश्किल मानकर छोड़ मत दे, कोशिश के साथ लगकर जोग को हासिल कर, क्योंकि मन को काबू में करने पर ही जोग मुमकिन है। इस पर अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन उवाच।
श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति।
जोग करते करते अगर किसी का मन मुतजलजिल हो जाए, अगरचे अभी जोग में उसकी अकीदत मौजूद है ही, तो ऐसा इंसान माबूद को हासिल ना कर किस अंजाम को पहुंचता है।
कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि।
बाजुए अजीम श्री कृष्ण माबूद को हासिल करने के रास्ते से भटका हुआ वो फरीफ्ता इंसान बिखरे हुए बादल की तरह दोनों तरफ से बर्बाद व तबाह तो नहीं होता। छोटी सी बदली आसमान में घिर आए तो वो ना बरस पाती है ना लौटकर बादलों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा की झोंकों से देखते देखते उमूमन खत्म हो जाती है। उसी तरह कमजोर कोशिश वाला इंसान कुछ वक्त तक रियाजत करके पीछे हट जाने वाला खत्म तो नहीं हो जाता, वो ना आप में मकाम बना सका और ना लज्जते दुनिया ही उठा पाया, उसका कौन सा अंजाम होता है।
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता नह्युपपद्यते।
अय श्री कृष्ण, मेरे इस शक को मुकम्मल तौर से खत्म करने के लिए आप ही कादिर हैं। आपके अलावा दूसरा कोई इस शक को खत्म करने वाला मिलना मुमकिन नहीं है। इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाचा,
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति।
खाकी जिस्म को ही रथ बनाकर मकसूद की तरफ आगे बढ़ने वाले अर्जुन, उस इंसान का ना तो इस दुनिया में और न आलमे बाला में ही खातिमा होता है, क्योंकि आए दोस्त उस आला इफादी मुअय्यना अमल को करने वाला बदहाल नहीं होता, उसका होता क्या है।
प्राप्य पुण्य कृतां लोका उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहि योग भ्रष्टो भिजायते।
मन शोक होने की वजह से बदउनवान वो इंसान शरीफ उन नफ्स लोगों के अवालिम में ख्वाहिशात का लुत्फ उठाकर, यानी जिन ख्वाहिशात की बिना पर वो जोग से बदउनवान हुआ था, माबूद उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं, उसका तलज्जुस उठाकर शुचि नाम श्रीमताम पाक बर्ताव वाले आला मर्तबत इंसानों के घर में पैदा होता है, यानी जो पाक बर्ताव वाले हैं वही आला मर्तबत हैं।
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्।
ख्वाह वहां जन्म न मिलने पर साबितुल अक्ल जोगियों के खानदान में उसे जगह मिल जाती है, आला मर्तबत वालों के घर में मुतवर्रिक तासुर बचपन से ही मिलने लगते हैं, लेकिन वहां पैदा ना होने पर वो जोगियों के खानदान में यानी घर में नहीं शागिर्दगी में दाखिला पा जाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि वगैरह को मुतवर्रिक बर्ताव और आला मर्तबत घराने में नहीं जोगियों के घराने में दाखिला मिला। मुर्शिद के घराने में तासुरात का बदलाव भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म दुनिया में बिलाशुबा और बे इंतहा कामयाब है। जोगियों के यहां जन्म लेने का मतलब उनके जिस्म से फर्जंद की शक्ल में जन्म लेना नहीं है, घर छोड़ने से पहले पैदा होने वाली औलाद उनसियत की वजह से अजीम इंसान को भले ही अपना वालिद मानती रहे, लेकिन अजीम इंसान के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शागिर्द उनके उसूलों की बजा आवरी करते हैं, उनकी अहमियत औलाद से कई गुना ज्यादा मानते हैं, वही उनकी हकीकी औलाद हैं। जो जोक के तासुरात से मुजयन नहीं हैं, उन्हें अजीम इंसान कबूल नहीं करते। काबिले एहतराम महाराज जी, अगर हर किसी को साधु बनाते तो हजारों बेजार लोग उनके शागिर्द होते, लेकिन उन्होंने किसी को सफर खर्च देकर, किसी के घर कब्र भेजकर, खत भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर वापस भेज दिया। बहुत से लोग बजिद हुए तो उन्हें बदशगुन होने लगे। अंदर से मना ही हो कि उसमें साधु बनने का एक भी निशान नहीं है, इसे रखने में खैर नहीं है, यह कामयाब नहीं होगा। ना उम्मीद होकर दो एक ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान भी दे दी, लेकिन महाराज जी ने उन्हें अपने पास नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, मैं जानता था कि बड़ा बेकरार है, लेकिन अगर सोचते कि सच में मर जाएगा तो रख लेते, एक गुनाहगार भी रहता और क्या होता। शफकत उनमें भी बहुत ज्यादा थी, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को जिनके लिए हुक्म हुआ था, आज एक जोक से बदुनवान शख्स आ रहा है, जन जन से भटका हुआ चला आ रहा है। इस नाम और इस शक्ल का कोई आने वाला है, उसे रखो, इल्म तसव्वुफ की नसीहत दो, उसे आगे बढ़ाओ। सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा। आज भी उनमें से एक अजीम इंसान धार कुंडी में बैठे हैं, एक अनसुया में हैं, 2-3 दूसरी जगह भी हैं। उन्हें मुर्शिद के घराने में दाखिला मिला। ऐसे अजीम इंसानों को हासिल कर पाना बेहद कामयाब है।
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन।
वहां वो इंसान इस जन्म से पहले वाले जिस्म में जो कुछ रियासत की थी, उस अकल के इत्तेहाद को यानी पहले जन्म के रियाजत के तासुरात को बर वक्त ही हासिल कर लेता है। और ऐ कुरु नंदन यानी कुरु खानदान वाले, उसके असर से वो फिर माबूद के हुसूल की शक्ल वाली आला कामयाबी के लिए कोशिश करने लगता है।
सेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते।
आला मर्तबद हजरात के घर दुनियवी मौजूआत के जेर असर रहने पर भी वो पहले जन्म की रियाजत से राह माबूद की जानिब मुतवज्जा हो जाता है, और जोग में कमजोर कोशिश वाला वो मुतजस्सिस भी जबान के मौजू को पार करके नजात वाले मकाम को हासिल कर लेता है। उसके हुसूल का यही तरीका है, कोई एक जन्म में हासिल करता भी नहीं।
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति।
मुख्तलिफ जन्मों से अपनी कोशिश में लगा जोगी आला कामयाबी को हासिल कर लेता है। कोशिश के साथ रियाजत करने वाला जोगी तमाम गुनाहों से अच्छी तरह पाक होकर आला नजात को हासिल कर लेता है। हुसूल का यही सिलसिला है, पहले कमजोर कोशिश से वो जोग की शुरुआत करता है, मन के शोक होने पर जन्म लेता है, मुर्शिद के घराने में दाखिला पाता है, और हर एक जन में रियाजत करते हुए उस मकाम पर पहुंच जाता है जिसका नाम आला नजात आला मकाम है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस जोक में तुख्म का खात्मा कभी नहीं होता, आप दो कदम चल भर दें उस वसीले का कभी खात्मा नहीं होता। हर हालत में जिंदगी बसर करते हुए इंसान ऐसा कर सकता है। वजह यह है कि थोड़ी रियाजत तो हालात से घिरा रहने वाला इंसान ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास वक्त की कमी है। आप काले हों, गोरे हों या किसी जगह के हों, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है, बशर्ते कि आप इंसान हों। शदीद कोशिश वाला चाहे जो हो, लेकिन कमजोर कोशिश वाला घरबार वाला यानी गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ बेजार तालीम याफ्ता ला इल्म महज आम इंसान के लिए है, किसी साधु नाम वाले अजीब इंसान के लिए ही नहीं। आखिर में जोग के मालिक श्री कृष्ण फैसला देते हैं।
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन।
रियाजत कशों से जोगी अफजल है, आलिमों से भी अफजल माना गया है, अमल करने वालों से भी जोगी अफजल है। लिहाजा अर्जुन तू जोगी बन। रियाजत कश यानी रियाजत मन के साथ हवास को उस जोग में ढालने के लिए मशक्कत करता है, अभी जोग उसमें ढला नहीं। अमली यानी अमली इस मुअय्यना अमल का इल्म हासिल कर उसमें लगा रहता है, ना तो वो अपनी कुव्वत समझकर ही लगा है और ना खुद सुपुर्दगी के साथ ही लगा है, सिर्फ अमल करता भर है। आलिम यानी इल्म की राह वाला इंसान उसी मुअय्यना अमल यज्ञ के खुसूसी तरीकेकार को अच्छी तरह समझते हुए अपनी कुव्वत इरादी को सामने रखकर उसमें लगा रहता है, उससे होने वाले नफा व नुकसान की जिम्मेदारी उसी की है, उस पर नजर रखकर चलता है। जोगी यानी बेगरज अमली जोगी माबूद पर मुनहसिर होकर पूरी अकीदत और खुद सुपुर्दगी के साथ मुअय्यना अमल जोग की रियाजत में लगा होता है, जिसकी खैरियत की जिम्मेदारी माबूद और जोग के मालिक श्री कृष्ण खुद लेते हैं। जवाल के हालात होते हुए भी उसके लिए जवाल का खौफ नहीं है, क्योंकि जिस उंसुर आला को चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी ले लेता है। रियाजत कश अभी जोग को अपने अंदर ढालने में कोशा है, आमिल सिर्फ अमल जानकर करता भर है। ये गिर भी सकते हैं क्योंकि इन दोनों में सुपुर्दगी है और ना अपने नफा व नुकसान को देखने की सलाहियत, लेकिन आलम जोग के हालात को जानता है, अपनी ताकत समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और बेगरज अमली जोगी तो माबूद के ऊपर अपने को फेंक चुका है यानी उसकी पनाह में जा पहुंचा है, लिहाजा वो माबूद संभालेगा। फलाह कामिल के रास्ते पर ये दोनों ठीक चलते हैं, मगर जिसकी जिम्मेदारी वो माबूद संभालता है वो इन सब में अफजल है, क्योंकि वो माबूद ने उसे कबूल कर लिया है, उसका नफा व नुकसान वो माबूद देखता है, इस वास्ते जोगी अफजल है। लिहाजा अर्जुन तू जोगी बन, खुद सुपुर्दगी के साथ जोग का बर्ताव कर। जोगी अफजल है, लेकिन उनसे भी वो जोगी आला अफजल है जो बातिन से लगा होता है, इसी पर कहते हैं।
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः।
तमाम बेगरज अमली जोगी हजरात में भी जो अकीदत में मुनहमिक होकर पूरे जमीर से दाखिली गौर फिक्र से मुझे मुसलसल याद करता है, वो जोगी मुझे आला अफजल काबिले ताजीम है। याद इलाही बनावटी या नुमाइश की चीज नहीं है, इसमें मुआशरा भले ही मवाफिक हो लेकिन माबूद बरखिलाफ हो जाते हैं। याद इलाही बे इंतहा बसे गए राज है और वो बातिन से होता है, उसका मद्दो जजर बातिन पर मुनहसिर है। मगज सुखन निष्कर्ष। इस बाब के शुरू में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा कि समरे की उम्मीद से मुबर्रा होकर कार्यम कर्म यानी करने के लायक खुसूसी तरीके कार पर कारबंद होता है, वही कामिल है और उसी अमल को करने वाला ही जोगी है। सिर्फ आमाल या आग को तर्क करने वाला जोगी या कामिल नहीं होता, इरादों का इशार किए बगैर कोई भी इंसान कामिल या जोगी नहीं होता। हम इरादा नहीं करते, महज ऐसा कह देने से इरादे दामन नहीं छोड़ते। जोग में आमादा होने की ख्वाहिश वाले इंसान को चाहिए कि कार्यम कर्म करने लायक खास तरीके कार करें। अमल करते करते जोग में साकिन हो जाने पर ही सारे इरादों का खातिमा हो जाता है, उससे पहले नहीं। सारे इरादों का खातिमा ही तर्क दुनिया है। जोग के मालिक ने फिर बताया कि रूह जहन्नम में जाती है और उसको नजात भी मिलती है। जिस इंसान के जरिए मन के साथ हवास काबू में कर लिए गए हैं, उसकी रूह उसके लिए दोस्त बनकर दोस्ती का सलूक करती है और यह हालत निहायत इफादी होती है जिसके जरिए उन पर काबू नहीं किया गया, उसके लिए उसी की रूह दुश्मन बनकर दुश्मनी का सलूक करती है, मुसीबतों की वजह बनती है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपनी रूह को जहन्नम रसीद ना करे, अपने जरिए अपनी रूह को नजात दिलाए। उन्होंने हुसूल वाले जोगी की बूदोबाश बताई, यज्ञ करने की जगह, बैठने का आसन और बैठने के तरीके पर उन्होंने बताया कि जगह यकसोई वाली और साफ सुथरी हो, कपड़ा हिरन वगैरह की खाल या कूस की चटाई में से कोई एक आसन हो, अमल के मुताबिक कोशिश, उसी के मुनासिब खुराक और तफरीह, सोने जागने की एहतियात पर उन्होंने जोर दिया। जोगी के काबू याफ्ता तबीयत की मिसाल उन्होंने साकिन फिजा वाली जगह में चिराग की उस लौ से दी जिसमें लर्जिश नहीं होती, और इस तरह उस काबू में की गई तबीयत की भी जब तहलील हो जाती है, उस वक्त वह जोग की आला हालत बेशुमार मसर्रत को हासिल कराती है। दुनिया से मिलने और बिछड़ने से मुबर्रा बेशुमार सुकून का नाम नजात है। जोग का मतलब है उससे यानी माबूद से मिलन। जो जोगी उस मकाम को हासिल कर लेता है वो सारे जानदारों में मुसावी नजर वाला हो जाता है। जैसी अपनी रूह वैसी ही सबकी रूह को देखता है, वो आखिरी आला अंजाम के सुकून को हासिल करता है। लिहाजा जोग जरूरी है। मन जहां जहां जाए वहां वहां से घसीट कर बार बार उसको काबू में करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कबूल किया कि मन बड़ी मुश्किल से काबू में होने वाला है लेकिन काबू में हो जाता है। यह रियाजत और बैराग के जरिए काबू में हो जाता है। कमजोर कोशिश वाला इंसान भी मुख्तलिफ जन्मों की रियाजत के बाद इस मकाम पर पहुंच जाता है जिसका नाम आला नजात या आला मकाम है। रियाजत कशों आलिमों और सिर्फ अमल करने वालों से जोगी अफजल है। लिहाजा अर्जुन तू जोगी बन, खुद सुपुर्दगी के साथ बातिन से जोग पर कारबंद हो। पेश करदा बाब में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने खास तौर से जोग के हुसूल के लिए रियाजत पर जोर दिया है, लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अभ्यास योगो नाम षष्ठो अध्याय। इस तरह श्रीमद भगवद गीता की तमसील उपनिषद वो इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में जोग रियाजत यानी अभ्यास योग नाम का छठा बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये अभ्यास योगो नाम षष्ठोध्याय। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गड़ानंद के जरिए लिखी श्रीमद भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में जोगे रियाजत अभ्यास योग नाम का छठा बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत्।